पृष्ठ संख्या 94, गजानन माधव मुक्ति बोध, ब्रैकेट में 1918 से 1964 ईस्वी की गणना भी प्रगतिशील समीक्षा के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। यद्यपि आरंभ में वह तार सप्तक के कवि के नाते विख्यात हुए, तथापि उनकी प्रखर, गहरी और व्यापक आलोचना क्षमता का परिचय भी तार सप्तक के प्रकाशन के समानांतर ही मिलना आरंभ हो गया था। उनकी प्रथम आलोचनात्मक रचना कामायनी एक पुनर्विचार का पुस्तकाकार प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ, परंतु इस विषय पर कामायनी कुछ नए विचार शीर्षक से दो लेख क्रमशः हंस के नवंबर 1945 और फरवरी 1946 के अंकों में बहुत पहले ही निकल चुके थे। शीर्षक के अनुरूप इन लेखों में उनकी दृष्टि की मौलिकता और परंपरा मुक्त चिंतन क्षमता का प्रमाण मिलता है। कामायनी पर पुनर्विचार करने की प्रेरणा के कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि कामायनी साहित्य के पृष्ठ संख्या 95, रसवादी छायावादी पुराण पंथियों के हाथ में नवीन प्रगति शक्तियों के विरुद्ध एक शस्त्र बन गई। कामायनी पुनर्विचार पृष्ठ 151, और यह भी कि भावादी आलोचकों ने प्रसाद जी से भी आगे बढ़कर कामायनी का रहस्यवादी मनोवैज्ञानिक अर्थ लगाया और उसके उपयोगी तत्वों को प्रच्छन्न कर दिया। वही मुक्तिबोध को शिकायत थी कि उन्होंने कामायनी के संबंध में हर तरह की ऊंचे किस्म की गलतफहमियां भी फैलाईं। वही जाहिर है कि उन्होंने इन गलतफहमियों को दूर करने की जिम्मेदारी महसूस की। दिलचस्प बात तो यह है कि इस विषय में मुक्तिबोध का मतभेद रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिवादियों से भी है। मुक्तिबोध ने मनु के चरित्र के साथ जोड़ी गई ऐतिहासिकता और देशकाल अतीतता का विरोध करते हुए उन्हें अपने समय की वास्तविकता के साथ जोड़ा। वेदकालीन मनु कामायनी का मन नहीं है, उसे मनन मात्र का, मन मात्र का, मानव मात्र का प्रतिनिधि कहना सरासर गलत है। वही पृष्ठ 20, मुक्तिबोध के अनुसार प्रसाद का मन उसी वर्ग का मन है जिस वर्ग के स्वयं प्रसाद हैं। वही यानी वह मध्य व्यापारी वर्ग का प्रतिनिधि है। इस टाइप की व्याख्या करते हुए मुक्तिबोध ने उसे अपने समय के श्रेष्ठ पूंजीवादी व्यक्तिवाद का पुत्र भी नहीं बल्कि सामंत व्यवस्था के शासक वर्गों का पुत्र कहा है, जो नई ऐतिहासिक सामाजिक स्थिति के कारण पूंजीवादी व्यक्तिवाद को लिए हुए अपनी सामंती परंपरा से विच्छिन्न होकर भी सामंती शासक वर्गीय प्रवृत्तियों की तानाशाहियत को अपने खून में लिए हुए हैं। वही पृष्ठ 11, मन की प्रवृत्तियों के संस्कार उन्होंने उसी वर्ग में ढूंढे हैं, अहंकार, विलासिता, आत्ममोह, निर्बंध, उच्च श्रृंखलता, व्यक्तिवादी साहस, व्यक्तिवादी निराशा, पाखंड और ऐसा आत्मग्रस्त निविड़ आत्मविश्लेषण जो पराजय से प्रसूत होकर पराजयों की ओर ले जाता है। वही मुक्तिबोध प्रसाद की क्षमता और महत्व इसलिए नहीं स्वीकार करते कि उन्होंने मन को देश कालातीत शाश्वत मानव का रूप दिया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने पूंजीवादी राष्ट्रगत सभ्यता के भीतर व्यक्ति के भीतरी विकेंद्रीकरण का प्रश्न बड़े जोर से उठाया। वही पृष्ठ 151, फलतः कामायनी मुक्तिबोध की नज़र में द्विअर्थक रूपक कथा न होकर फैंटेसी है। उन्होंने उसकी रचना प्रक्रिया को एक विराट फैंटेसी के रूप में ही देखने समझने का प्रयत्न किया। वह कामायनी को मुख्यतः एक कवि की निजी और भीतरी प्रवृत्तियों के आधार पर निर्मित एक विराट काल्पनिक पृष्ठ संख्या 96 दृश्य चित्र मानते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने कामायनी की अंतर प्रक्रिया का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि कामायनी अपनी कथात्मकता, चरित्रात्मकता के बावजूद भी वस्तुतः प्रमुख रूप से आत्मपरक काव्य है। कामायनी एक पुनर्विचार पृष्ठ 36, परंतु साथ ही वह यह नहीं कहते कि मनु प्रसाद जी के मन अथवा व्यक्तित्व का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करता है। वही पृष्ठ 37, कामायनी की रचना प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का परिचय देते हुए मुक्तिबोध वहीं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उसके आगे बढ़कर मन को एक वर्ग चरित्र के रूप में देखते हुए ध्वस्त सामंतवाद के अवशिष्ट चरित्र के रूप में उनकी समस्त चारित्रिक विशेषताओं का निरूपण करते हैं। मनु ही नहीं, कामायनी के दो अन्य महत्वपूर्ण स्त्री पात्रों, ईड़ा और श्रद्धा की चारित्रिक व्याख्या भी इसी सूत्र से जुड़ी है। उनकी दृष्टि में ईड़ा बुद्धिवाद की प्रतीक नहीं, पूंजीवाद की प्रतिनिधि है। पृष्ठ 163। और उस महाकाव्य में जितने भी पात्र हैं उनमें ईड़ा का व्यक्तिगत चरित्र दृढ़तम और उज्ज्वलतम है। इसके विपरीत श्रद्धा आत्मबद्ध भावुकता के आदर्शीकरण का नाम है। पृष्ठ 158। श्रद्धा को वह एक ऐसे प्राइवेट इंडिविजुअल के रूप में पाते हैं जिसके पास कोई अपना सार्वजनिक जीवन नहीं है। उसकी दार्शनिकता, गहन संवेदन क्षमता या अनुभूति संपन्नता की उपयोगिता तो उचित समाजीकरण के अभाव में संदेह का विषय हो ही जाती है, परंतु इसके अलावा वह स्वयं इच्छा, ज्ञान और क्रिया कि जिस सामंजस्य का वाचिक विधान करती है उसका कोई व्यवहारिक रूप उसके अपने चरित्र में नहीं मिलता। श्रद्धा की यह मसीहाई मुद्रा मुक्ति बोध के गले नहीं उतरती। पुस्तक के अंत में आंसू की रचना प्रवृत्ति से कामायनी का संबंध जोड़ते हुए ऐतिहासिक क्रम में मुक्तिबोध ने प्रसाद की काव्य रचना प्रक्रिया की जो व्याख्या की है वह ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार कामायनी में प्रतिपादित दार्शनिक या आध्यात्मिक दृष्टि को उन्होंने जिस रूप में वर्ग व्यवस्था से जोड़कर देखा है उसके पीछे तर्क का बल है। कामायनी में समस्या का, द्वंद्व का जो रूप चित्रित किया गया है, जिस प्रचंड अंतर्विरोध के तनाव की कोख से कामायनी का जन्म हुआ है, उसके अनुरूप निदान की वास्तविकता या व्यवहारिकता संदेहास्पद है, क्योंकि इच्छा ज्ञान क्रिया का सामंजस्य वास्तविक जीवन क्षेत्र में होता है, ना कि संसार से पलायन करके हिमालयी शिखरों पर। पृष्ठ 183। प्रसाद ने पृष्ठ 97 वर्गीय चरित्रों के माध्यम से भावनाओं और अनुभूतियों का एक विराट काल्पनिक दृश्य चित्र तो प्रस्तुत किया, परंतु इन चरित्रों का अकारण आदर्शीकरण करके इसी वर्ग का आगतिक पलायनवादी दर्शन प्रस्तुत कर दिया। यहाँ तक कि रहस्यवाद और आध्यात्मिक रंग देने के उत्कट प्रलोभन से ईड़ा जैसे प्रखर, गत्यात्मक, तेजस्वी, व्यवहारक्षम पात्र भी नहीं बच सके। कामायनी की वर्ग दर्शन पर आधारित विस्तृत पुनर्व्याख्या करके मुक्तिबोध ने आलोचक रूप में अपनी मार्क्सवादी दृष्टि का प्रमाण प्रस्तुत किया, परंतु इसके साथ उनके आलोचक का एक पहलू वह भी है जिसमें एक जागरूक रचनाकार के नाते वह अपनी रचना प्रक्रिया के निर्मल साक्षी प्रतीत होते हैं। बाद की आलोचनात्मक कृतियाँ इसी रचना प्रक्रिया के आत्मसजग विश्लेषण की उपज हैं। एक साहित्यिक की डायरी 1964 ईस्वी और नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी इस दृश्य से उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मुक्तिबोध आस्था से मार्क्सवादी थे, किंतु नई कविता के मूल्यांकन को लेकर वे पुराने प्रगतिवादी आलोचक से अलग थे। उन आलोचकों से उन्हें यह खास शिकायत थी कि उन्होंने अपनी नासमझी के कारण नई कविता का पूरा क्षेत्र अपने प्रतिपक्षियों को समर्पित कर दिया। उनकी राय में किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी। इस प्रवृत्ति से अपना विरोध प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि वह प्रगतिवादी आलोचक बनते हुए साहित्य की जीवन भूमि से असंपृक्त रहकर साहित्यांकित जीवन और साहित्य सृजन की वास्तविक मानव भूमि, इन दोनों में घनिष्ठ परस्पर संबंधों के स्वरूप पर, इन दोनों के अपने अपने विशिष्ट स्वरूप का आकलन करते हुए या छिछली सतही दृष्टि से उनका आकलन करते हुए न्याय निर्णय प्रदान करते हैं। इस प्रकार मुक्तिबोध ने मार्क्सवादी आलोचना को सतहीपन से उबार कर गहराई तक ले जाने का प्रयास किया है। मुक्तिबोध का दूसरा संघर्ष नई कविता के व्यक्तिवादी अंतर्मुखी साहित्य सिद्धांतों से था। उन्होंने नई कविता की जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि का डटकर विरोध किया। व्यक्तिवादियों की आलोचना करते हुए उन्होंने लिखा है कि आधुनिक भावबोध संबंधी उनकी धारणा जनसाधारण की उपेक्षा करके लघुमानों की, उनकी कल्पना समाज और जनता को भीड़ कहकर उसका अपमान करने की प्रवृत्ति पूंजीवादी समाज रचना और साम्यवादी। पृष्ठ संख्या 98। समाज रचना दोनों को औद्योगिक सभ्यता कहकर उस औद्योगिक सभ्यता के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व के नाश की अनिवार्यता मानो, और इस प्रकार मानव की विफलता और अगतिकता को मूलभूत और चरम मानकर अनाशा की प्रस्थापना करना, यह मुझे असंगत, अनुचित और हानिप्रद मालूम होती है। मुक्तिबोध ने आलोचक के दायित्व को आपद धर्म न मानकर धर्म माना। इसीलिए एक अत्यंत सजग आत्मचेता साहित्यकार की तरह उन्होंने कविता की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किया। काव्य रचना के तीन क्षणों का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, कला का पहला क्षण है जीवन का उत्कट तीव्र अनुभव क्षण, दूसरा क्षण है इस अनुभव का अपने कसकते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी का रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो, तीसरा और अंतिम क्षण है इस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया का आरंभ और उस प्रक्रिया की परिपूर्ण अवस्था तक की गतिमानता, एक साहित्य की डायरी पृष्ठ 16-17। इन तीन क्षणों में से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वही भाषा तथा भाव के बीच द्वंद्व का क्षण है और वह द्वंद्व अत्यंत महत्वपूर्ण और सृजनशील है। भाषा एक परंपरा के रूप में फैंटेसी के मूल रंग को विस्तृत कर देती है किंतु साथ ही उस फैंटेसी में संशोधन भी उपस्थित करती जाती है। साथ ही फैंटेसी अपने मूल रंगों के निर्वाह के लिए, अपने मूल रंगों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा पर दबाव डालती है। उसके शब्दों और मुहावरों में नई अर्थमत्ता, नई अर्थ क्षमता, नई अभिव्यक्ति भर देती है। कला के तीसरे क्षण में यह महत्वपूर्ण द्वंद्व है। वही पृष्ठ 25। मुक्तिबोध की काव्य रचना का मुख्य माध्यम फैंटेसी है। उनके इस फैंटेसी मोह को लक्ष्य करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था कि यथार्थ को फैंटेसी में बदले बिना जैसे वह पकड़ ही नहीं पाते, अतः फैंटेसी की रचना की व्याख्या और उसमें निहित वास्तविक जीवन के अन्वेषण की विधि का निरूपण करके जैसे मुक्तिबोध अपनी रचना प्रक्रिया की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, इसी प्रकार लंबी नाटकीय कविता के रचना विन्यास में निहित सिद्धांत का निरूपण करके मुक्तिबोध ने इस विषय में अपनी सामर्थ्य असामर्थ्य का ही विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उनके शब्दों में यथार्थ के तत्व परस्पर गुंफित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता और जो छोटी होती हैं वे वस्तुतः छोटी ना होकर पृष्ठ संख्या 99 अधूरी होती हैं। वही पृष्ठ 27। विडम्बना यह है कि जिन मुक्तिबोध ने स्वीकार किया है, इस प्रकार की ना मालूम कितनी कविताएं मैंने अधूरी लिखकर छोड़ दी, उन्हें खत्म करने की कला मुझे नहीं आती, यही मेरी ट्रेजिडी है। वही उन्हीं मुक्तिबोध ने लंबी कविता की संरचना की व्याख्या इस प्रकार की है। अब कविता कोई निबंध तो है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालात की जानकारी मिले, न वह कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत कर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते रहते हैं। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर, या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर कथा तत्व भी भाव का इतिहास है। तो फिर ऐसी स्थिति में यह संभव नहीं है कि कविता को अनेक क्रमबद्ध चित्रों में प्रस्तुत किया जाए, अथवा अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्र कुछ इस तरह आलोकित और दीप्तिमान हो उठें कि छंद बन जाएं, गतिमान हो जाएं और एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो सकें। एक साहित्यिक की डायरी पृष्ठ 36-37। मुक्तिबोध ने व्यावहारिक आलोचना से आरंभ किया, परंतु क्रमशः कलाकृति की रचना प्रक्रिया और संरचनात्मक विशेषताओं के विश्लेषण से गुजरते हुए उनके कला चिंतन की चरम परिणति एक संपूर्ण कला सिद्धांत की रूपरेखा देने की कोशिश में हुई। उनके सारे आलोचनात्मक कृतित्व को देखते हुए निःसंकोच कहा जा सकता है कि नए प्रगतिशील कवि आलोचकों में वह सबसे प्रखर और गंभीर आलोचक थे। किसी कवि में आलोचना की ऐसी चिंतन शक्ति दुर्लभ ही है। नामवर सिंह ब्रैकेट में 1927। हिंदी के आधुनिक आलोचकों में नामवर सिंह का स्थान इस दृष्टि से विशिष्ट है कि वह समाजवादी जीवन दृष्टि और नई कविता की भावभूमि के संवेद बोध को लेकर आलोचना में प्रवृत्त हुए। अपने पूर्ववर्ती प्रगतिवादी आलोचकों से उनकी भिन्नता इस बात में है कि उन्होंने नई कविता को सहानुभूति से देखा। मुक्तिबोध प्रगतिवादी आलोचकों से इस बात की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि नामवर की पहली महत्वपूर्ण आलोचनात्मक समीक्षा छायावाद 1954 ईस्वी पर सामने आई। यह वह समय था जब पृष्ठ संख्या 100 छायावाद क्रमशः समर्थन और विरोध के दो दौरों से गुजर चुका था। अन्य आलोचकों से यह आलोचना इस बात में भिन्न है कि जहां औरों ने छायावाद की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया, वहां नामवर सिंह ने छायावादी कविता के छायाचित्रों में निहित तो सामाजिक सत्य का उद्घाटन किया। यह निश्चय ही मार्क्सवादी आलोचना का अधिक परिष्कृत रूप था। इस पुस्तक की एक बहुत बड़ी विशेषता इसकी शैली की सृजनात्मकता और ताजगी है, जो अध्यायों के शीर्षकों से ही स्पष्ट हो जाती है। यह बात अलग है कि बाद में उनके आलोचकों को इन शीर्षकों में रोमानियत दिखाई पड़ी। काव्य समीक्षा की उनकी दूसरी पुस्तक कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी दो खंडों में बटी है। प्रथम खंड में परंपरा से प्रतिष्ठित प्रतिमानों की प्रासंगिकता पर अत्यंत ध्वंसात्मक शैली में विचार किया गया है और दूसरे खंड में नई कविता के संदर्भ में काव्य मूल्यों का प्रश्न उठाया गया है। पुस्तक का यही अंश अधिक विधेयात्मक और महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ की मुख्य चिंता इस बात की चिंता है कि प्रगीत कविता कविता का पर्याय हो गई है और प्रगीत का प्रतिमान कविता का प्रतिमान हो गया है। इसलिए कविता के प्रतिमान को व्यापकता प्रदान करने की दृष्टि से आत्मपरक नई कविता की दुनिया से बाहर निकालकर उन कविताओं को भी विचार की सीमा में ले जाना आवश्यक है जिन्हें किसी अन्य उपयुक्त शब्द के अभाव में सामान्यतः लंबी कविता कहा जाता है। पृष्ठ 265। नामवर सिंह को शिकायत उन तमाम प्रतिमानों से है जो वैयक्तिक और आत्मपरक छायावादी संस्कारों से गढ़े गए हैं। इसलिए उन्होंने आत्मपरक कविता के सीमित दायरे से बाहर निकलकर काव्य के प्रतिमान निर्मित करने की उस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जिसकी कमी मुक्तिबोध भी महसूस कर रहे थे। नामवर सिंह ने इस पहचान को रेखांकित किया कि दरअसल आत्मपरक प्रगीत बनाम वस्तुपरक लंबी कविता के इस संघर्ष के मूल में केवल काव्य रूपों के वरण की समस्या नहीं है, बल्कि इसका संबंध पूरी कविता की बनावट संबंधी दो भिन्न काव्य दृष्टियों से है जिनके अंतर्गत भावबोध से भाषा तक के सभी स्तर शामिल हैं। छायावादी भावबोध की कविताओं के अतिरिक्त इधर नई कविता के अंदर जो आत्मपरक छोटी या बड़ी कविताएं लिखी गई हैं, वे अपने रचयिताओं की गैर रोमांटिक घोषणाओं के बावजूद मूलतः रोमांटिक पृष्ठ संख्या 101 हैं और एक औसत रोमांटिक प्रगीत के समान ही इनमें भी वैयक्तिकता, आत्मपरकता, अनुभूतियों की जटिलता के अभाव के साथ ही बिंबमयता और एक खास काट की रोमांटिक काव्य भाषा के प्रयोग प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन कविताओं में वस्तु जगत की समझदारी के स्थान पर केवल अनुभूति की ईमानदारी का आग्रह किया जाता है। कविताओं के इस वर्ग के विरुद्ध नामवर सिंह ने मुक्तिबोध की कविताओं के रूप में काव्य के उन मूल्यों पर बल देने का दावा किया जो अपनी दृष्टि में सामाजिक और वस्तुपरक हैं और आज के ज्वलंत एवं जटिल यथार्थ को अधिक से अधिक समेटने के प्रयास में कविता को व्यापक रूप में नाट्य विन्यास प्रदान कर रहे हैं और इस तरह तथाकथित बिंबवादी काव्य भाषा के दायरे को तोड़कर सपाट बयानी आदि अन्य क्षेत्रों में कदम रखने का साहस दिखा रहे हैं। जाहिर है कि नामवर सिंह ने जिन काव्य मूल्यों का प्रश्न उठाया है उनमें भाषा से लेकर भावबोध के स्तर तक काव्य रचना को एक सापेक्ष इकाई के रूप में देखा गया है। एक खास भावबोध और संस्कार से एक खास काट और बनावट की कविता पैदा हुई है। संरचना और भावबोध को स्वायत्त रूप में देखना बेमानी है। इसीलिए जब वह बाह्य परिवेश और कविता में अभिव्यक्ति अनुभूति की जटिलता और तनाव तथा उस अनुभूति की प्रामाणिकता तथा काव्यगत ईमानदारी के स्वरूप का विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं तो साथ ही काव्य भाषा और सृजनशीलता के संबंध जैसे मूलभूत प्रश्न पर भी विचार करते हैं, वह बिंब प्रधानता से सपाट बयानी तक आज की कविता की यात्रा को उसके भावबोध के इतिहास से जोड़कर देखते हैं और उसकी संरचना के प्रगीतात्मक और नाटकीय तथा अभिव्यक्ति की युक्तियों में विसंगति और विडंबना के प्रयोग का प्रश्न भी उठाते हैं। नई कविता के संदर्भ में उस कविता के बीच से पैदा होने वाले इन काव्य मूल्यों के प्रश्न को इतने बड़े पैमाने पर और इतने विचारोत्तेजक रूप में शायद इससे पहले नहीं उठाया गया। मूल्यों की चर्चा केवल सैद्धांतिक धरातल पर ना करके परिशिष्ट में मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की व्यवहारिक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए जैसे एक ओर पूर्व भाग में चर्चित प्रतिमानों की व्यवहारिकता सिद्ध करने का प्रयास किया गया है और दूसरी ओर इन प्रतिमानों का आधार स्पष्ट किया गया है। काव्य समीक्षा के अलावा सामान्य रूप से साहित्यिक मूल्यों को स्पष्ट पृष्ठ संख्या 102 करने का प्रयत्न उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास और आलोचना में संकलित निबंधों में भी किया है। व्यापकता और गहराई शीर्षक निबंध में इतिहास के संदर्भ में आमतौर से प्रचलित उस दृष्टिकोण का खंडन किया गया है जिसके अनुसार इन दोनों को विरोधी गुणों के रूप में देखते हुए गहराई को प्रायः अधिक मूल्यवान ठहराया जाता है। नामवर सिंह ने इनमें परस्पर विरोध के स्थान पर सहसंबंध की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त इतिहास का नया दृष्टिकोण 1952 ईस्वी और हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार 1962 ईस्वी शीर्षक निबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई है। इन निबंधों के माध्यम से लेखक ने मूल्यांकन परक आलोचना और साहित्यिक इतिहास के बीच संबंध स्थापना की है। ये लेख इस दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है कि इनमें साहित्य के इतिहास लेखन की एक नई दिशा का स्पष्ट निर्देशन किया गया है। समीक्षा के क्षेत्र में प्रायः उपेक्षित कथा समीक्षा को भी अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी ब्रैकेट में 1964 ईस्वी की रचना से नामवर सिंह ने काव्य समीक्षा के स्तर तक उठाया। हिंदी आलोचना के इतिहास में काव्य समीक्षा की एक समृद्ध परंपरा वर्तमान थी, किंतु कथा समीक्षा की किसी सुनिर्दिष्ट परंपरा के अभाव में सूक्ष्म विश्लेषण के माध्यम से समसामयिक कथा साहित्य की यह समीक्षा महत्वपूर्ण कही जाएगी। यूं कहानी की समीक्षा के लिए उन्होंने कविता के प्रतिमानों का प्रयोग किया या कथा समीक्षा के पृथक प्रतिमान विकसित किए, यह विवादास्पद है। पिछले 20 वर्षों में रचना के क्षेत्र में नए प्रयासों के द्वारा जो साहित्यिक मान्यताएं सामने आईं, नामवर सिंह ने उन्हें अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं और सिद्धांत चर्चा के द्वारा व्यवस्थित रूप दिया। लंबे अंतराल के बाद उनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुईं, दूसरी परंपरा की खोज 1982 और वाद विवाद संवाद 1989। पहली के रचनाकाल और प्रकाशन काल में बहुत अंतर नहीं है, जबकि दूसरी में संकलित लेखों के बारे में यह बात सही नहीं है। उसके सबसे पुराने लेख एकालाप और संवाद आलोचना की स्वायत्तता, प्रासंगिकता पर पुनश्च प्रलय की छाया के माध्यम से आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना तथा आलोचना और संस्थान का रचना वर्ष 1988 है। इस प्रकार पुस्तक के लगभग एक तिहाई की रचना एक वर्ष में हुई है और शेष दो तिहाई की लेखन पृष्ठ संख्या 103 की दृष्टि से 25 वर्ष लंबे ऊसर काल के दौरान यह बात अलग है कि इन वर्षों में अंतराल के बावजूद विराम नहीं आया। न लिखने या काफी न लिखने की शिकायत करने वालों को नामवर सिंह जवाब दे सकते हैं और देते हैं कि वह लिखाड़ नहीं है। किसी समस्या को लेकर लिखने की बौद्धिक विवशता या दबाव जब तक नहीं होता तब तक वह नहीं लिखते। सो परिस्थिति का दूसरा इन तमाम लेखों और दूसरी परंपरा की खोज के मूल में है। दूसरी परंपरा की खोज आकाश धर्मी गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति श्रद्धांजलि है और वाद विवाद संवाद के तमाम लेख लेखक के अपने शब्दों में किसी न किसी विशिष्ट संदर्भ से संबद्ध हैं। अपने नाम के बावजूद इनमें वाद विवाद जैसा बहुत नहीं है। शायद इसीलिए इनके प्रकाशन के बाद वैसा विवाद खड़ा भी नहीं हुआ जैसा दूसरी परंपरा की खोज के प्रकाशन के बाद देखने में आया था। दूसरी परंपरा की खोज की गणना पिछले दशक की महत्वपूर्ण रचनाओं में की जाएगी। निराला की साहित्य साधना में रामविलास शर्मा ने निराला के जीवन संघर्ष के हवाले से छायावादी काव्य आंदोलन के इतिहास की पुनर्रचना की थी। उस कृति का विशेष महत्व जीवनी के परंपराबद्ध रूप का अतिक्रमण करने की दृष्टि से है। दूसरी परंपरा की खोज में नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के घटनात्मक ब्यौरों का विस्तार करने के बजाय उन्हीं अंशों की चर्चा की है जो उनकी रचनात्मक दृष्टि की समझ में सहायक हो सकते हैं। आलोचक नामवर सिंह के आलोचकों ने तत्काल इसे रामचंद्र शुक्ल बनाम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहस का रूप दे दिया। कविता के नए प्रतिमान में अज्ञेय के विरुद्ध मुक्तिबोध को प्रतिष्ठित करने के प्रयास में इसकी समांतरता ढूंढ लेने के बाद विवाद ने एक खास मोड़ ले लिया और बहस का केंद्र बदल गया। स्मरण दिलाना अप्रासंगिक नहीं होगा कि निराला की साहित्य साधना के प्रकाशन के बाद भी कुछ ऐसे सवाल निराला बनाम पंत की बहस की शक्ल में इस तरह सामने आए थे कि शांति जोशी को पंत की एक जवाबी जीवनी लिखकर स्पष्टीकरण करने की जरूरत महसूस हुई। इस तरह के विवाद सही परिप्रेक्ष्य में रचनाओं की समझ के लिए अक्सर बाधक ही होते हैं। दूसरी परंपरा की खोज का महत्व तो इस बात में है कि उसमें कुछ ऐसी अवधारणाओं के परंपरागत मूल का प्रश्न उठाया गया है। पृष्ठ संख्या 104, जिन्हें बड़ी सुविधा से पश्चिम की देन स्वीकार करके उनके पारंपरिक मूल विशेष आग्रहों के तहत खोज कर निश्चित कर दिए गए। सौंदर्य की अवधारणा और सौंदर्य बोध का पारंपरिक विकास ऐसा ही प्रश्न है। भारतीय संस्कृति की विशुद्धता का सवाल भी ऐसा ही बहस तलब सवाल है जिस पर बराबर विचार होता रहा है। इसे हिंदी के दो आलोचकों की टकराहट का रूप देना मूल प्रश्न से मुंह चुराना होगा। अपने समय में जयशंकर प्रसाद ने भी कुछ ऐसे ही सवालों से जूझने की कोशिश की थी। पक्ष विपक्ष से सहमति अलग बात है, परंतु इस पूरे सवाल को जिस परिप्रेक्ष्य में उठाया गया है उसे दो आचार्यों के बीच टकराहट का सवाल बनकर उलझाने के बजाय उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह प्रश्न सांस्कृतिक विरासत, साहित्य रुचि के विकास और प्रतिबद्धता की पहचान से तो ताल्लुक रखता ही है। जिस शैली में इसे प्रस्तुत किया गया है उसकी रचनात्मकता और पठनीयता का भी अपना अलग आकर्षण है। लंबे अंतराल के बाद नामवर सिंह के आलेखों, जिनमें वाचिक के लिपिबद्ध रूप शामिल हैं, के 5 संग्रह प्रकाशित हुए। इनमें विधिवत लिखित से वाचिक की संख्या कहीं अधिक है। कविता की जमीन और जमीन की कविता, प्रेमचंद और भारतीय समाज, हिंदी का गद्य पर्व, जमाने से दो दो हाथ, इन चारों पुस्तकों का संग्रह और संपादन उदीयमान रचनाकार डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने किया। स्वर्गीय डॉक्टर कमला प्रसाद अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ और नामवर सिंह के कथाकार अनुज काशीनाथ सिंह की प्रेरणा और प्रोत्साहन से चारों ग्रंथ एक साथ 2010 में राजकमल से प्रकाशित हुए। पुस्तकों में संग्रहित सामग्री की प्रकृति और विषय वस्तु का परिचय संपादक ने भूमिका में कुछ ऐसे दिया है। सामयिक विषयों पर एक स्वतंत्र पुस्तक के साथ प्रेमचंद पर केंद्रित पुस्तक में आलेख, भाषण एवं वाचिक टिप्पणियां एक साथ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त वाचिक की 2 पुस्तकें, लिखित की 2 पुस्तकें और साक्षात्कार संवाद की 2 पुस्तकें, उपर्युक्त 4 पुस्तकें पाठकों के सामने हैं और शेष 4 के शीघ्र ही सामने होने का आश्वासन भी भूमिका में दिया गया है। साथ ही यह भी कि इन पुस्तकों से गुजरते हुए आप नामवर जी की प्रतिभा के विविध आयामों से संवाद कर सकेंगे। कहना ना होगा कि बकौल संपादक इनमें से कोई रचना किसी पृष्ठ संख्या 105 पूर्व निर्धारित विषय पर योजना बनाकर उस तरह नहीं लिखी गई है जैसे उनकी पहले की कृतियां, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज। स्वभावतः इनमें तारतम्य और एक तानता का अभाव है। दरअसल संकलित सामग्री में लिखित का अनुपात वाचिक की तुलना में काफी कम है, जो है वह भी अवसर के अनुरोध से संपादकीयों के रूप में बोले गए कि रिकॉर्डिंग के उन्हीं की कलम से संशोधित पाठ के रूप में या किसी संपादक के आग्रह पर यदा कदा किसी बहस में हिस्सेदारी के बतौर उन्होंने लिखने से कहीं ज्यादा पढ़ा और सुना। वे अद्भुत स्मरणशीलता के धनी हैं। उसी के बल पर वैचारिक कुश्तियों में प्रतिपक्ष को पटखनी देने के कौशल में उनका सानी नहीं है। इसी कौशल के सहारे हिंदी आलोचना में परिदृश्य पर वे वर्षों छाए रहे हैं। इन पुस्तकों की विशेषता यही नहीं है कि इनके माध्यम से पाठक नामवर जी की प्रतिभा के विविध आयामों से संवाद कर सकेंगे, बल्कि यह भी है कि यदि पाठक चाहे तो उनसे विवाद भी कर सकेंगे, क्योंकि इनके प्रकाशन से उनके श्रोताओं और पाठकों के पास शिकायत की गुंजाइश नहीं बची कि वह बात को जैसा चाहें वैसा रुख देकर बच निकलते हैं, अपने ही कहे हुए को बदल सकते हैं, असंगत को पैंतरा बदल कर संगत साबित कर सकते हैं। आखिर वाग्मिता में भी तो उनसे बराबर की टक्कर लेने वाला, ब्रैकेट में विजय देव नारायण शाही के बाद कोई दूसरा रचनाकार दिखाई नहीं पड़ा। संपादक ने इस सामग्री के संग्रहण एवं प्रकाशन के प्रति नामवर जी में गहरी असंपृक्ति भले ही निरंतर महसूस की हो, पर इसके पुस्तकवार विभाजन और पुस्तकों के शीर्षकों पर उनकी छाप स्पष्ट है। वो कि यह भी सही है कि संग्रह के लिए संग्रह निकालना नामवर जी की प्राथमिकता कभी नहीं रही। यदि इनके प्रकाशन की अनुमति देने में उनके मन में इतने लंबे समय तक संकोच रहा तो इसका कारण कहीं न कहीं उनका विवेक भी रहा ही होगा। वे इस खतरे के प्रति पूरी तरह उदासीन हो नहीं सकते थे कि इस सामग्री के सामने आते ही उत्साही अध्येता एक बार फिर उनके कहे सुने और लिखे पढ़े में असंगति और अंतर्विरोध खोज कर उन पर मौका परस्ती का आरोप लगाने से नहीं चूकेंगे। पर अब इस 1000 पृष्ठों में फैली अधिकतर वाचिक सामग्री के लिखित पाठ का पुनरीक्षण और संपादन कर विसंगतियों का निरसन संशोधन करने का धैर्य उनमें नहीं बचा है। और यह भी तो सत्य, पृष्ठ संख्या 106 है ही कि जमाने से दो दो हाथ करना उनकी पुस्तक का शीर्षक ही नहीं, उनकी स्वाभाविक वृत्ति है, जिसका मौखिक प्रयोग वे आज की समान भाव से शत्रु मित्र सब पर करते दिखाई पड़ते हैं। युद्धम देहि संभवतः उनका बीज भाव है। बहरहाल बात उनके प्रकाशित संकलनों की करें तो इन चार पुस्तकों से पहले 2005 में प्रकाशित आलोचक के मुख से शीर्षक के अनुरूप उनके व्याख्यानों का संग्रह है। व्याख्यानों में मंच के अलावा कोई एक सूत्रता नहीं है, क्रम भी तिथि के नहीं, संपादक खगेंद्र ठाकुर के विवेकानुसार दिया गया है। विषय विविध हैं, उसी तरह जैसे हिंदी का गद्य पर्व और जमाने से दो दो हाथ में। अंतर इतना ही है कि वह चूंकि प्रगतिशील लेखक संघ की ओर से पटना में आयोजित विचार सभाओं में दिए गए व्याख्यान हैं, इसलिए संपादक ने उनसे प्रगतिशील आंदोलन को मजबूत करने में मददगार होने की उम्मीद जताई है। यह उम्मीद विषय चयन और उसकी प्रतिपादन शैली दोनों की प्रकृति का संकेत करती है। एक और खास बात यह कि यह नामवर जी के व्याख्यानों का पहला संग्रह है, केवल संग्रह पहला है, वरना बिहार प्रगतिशील लेखक संघ की पत्रिका उत्तरशती में ये व्याख्यान संग्रह के संपादक के ही द्वारा पहले भी छापे जा चुके थे। यही स्थिति कुल मिलाकर उनके 2010 में प्रकाशित संग्रहों की भी है। अधिकांश सामग्री वाचिक से लिखित रूप में या अवसर के ही अनुरोध से पत्र पत्रिकाओं में पहले प्रकाशित हो चुकी है। ऐसे जिन व्याख्यानों आलेखों में विषय की दृष्टि से संबंध कायम किया जा सका, उन्हें प्रेमचंद और भारतीय समाज तथा कविता की जमीन और जमीन की कविता शीर्षक से दो जिल्दों में और शेष सामग्री को जमाने से दो दो हाथ और हिंदी का गद्य पर्व नाम से दो अलग जिल्दों में प्रकाशित किया गया है। युवा संपादक आशीष त्रिपाठी ने चार पुस्तकों की छोटी बड़ी भूमिकाएं लिखकर यह स्पष्ट किया है कि इन पुस्तकों में प्रकाशित हो रही सामग्री पिछले 60 वर्षों की दीर्घ अवधि में लिखित एवं प्रकाशित परंतु असंकलित रही है। संपादक ने संकलित सामग्री को ध्यान में रखते हुए भूमिकाओं को शीर्षक देने की कोशिश की है, जिनमें हिंदी आलोचना के 60 वर्ष, ब्रैकेट में हिंदी का गद्य पर्व और अप्रतहित वैचारिक योद्धा, ब्रैकेट में जमाने से दो दो हाथ से तो विषय वस्तु का कुछ हद तक अंदाजा लगता है, पर देहरी पर ब्रैकेट में प्रेमचंद और भारतीय समाज पृष्ठ 107 और पहला वाक्य ब्रैकेट में कविता की जमीन और जमीन की कविता से कोई सार्थक संकेत नहीं मिलता। संकलनकर्ता का यह कहना कि बेमानी है कि नागार्जुन और शमशेर पर लिखे गए निबंधों से गुजरते हुए हम सहज ही लक्षित कर सकते हैं कि यह निबंध कविता के नए प्रतिमान पुस्तक की काव्य दृष्टि का विस्तार और स्पष्टीकरण एक साथ हैं। एक हद तक उसमें छूट गए महत्वपूर्ण रचना संसार को फोकस में लाने का एक गंभीर प्रयास भी। कविता की जमीन पृष्ठ 5। दिलचस्प है कि शमशेर पर लिखे गए दो निबंधों में से पहला कृति के प्रवेशांक के लिए अक्टूबर 1958 में कविता के नए प्रतिमान से बहुत पहले लिखा जा चुका था, और दूसरा शमशेर प्रतिनिधि कविताएं की भूमिका के रूप में बहुत बाद में 1990 में लिखा गया। यही स्थिति नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताएं की भूमिका की है। ना होता प्रतिनिधि कविताएं का संपादन तो ना ही लिखी जाती भूमिकाएं। इसके अलावा बाबा की ऐसी तैसी जैसे आलेख को आजकल जून 1996 छूट गए महत्वपूर्ण रचना संसार को फोकस में लाने के एक गंभीर प्रयास के रूप में देखना दिखाना नामवर जी के चिंतन में तार्किकता या योजनाबद्धता सिद्ध करने की लचर दलील भर है। नामवर सिंह ने यदि स्वयं इस सामग्री का संकलन संपादन किया होता तो जाहिर है इस तरह के बेबुनियाद दावे उन्होंने नहीं किए होते। पुस्तकों के शीर्षकों पर तो उनकी छाप जरूर दिखाई पड़ती है, पर इससे कुछ ज़्यादा नहीं। पर वर्षों की अवधि में फैली इस सामग्री को बड़े जतन से सहेज कर जैसे तैसे क्रम देकर पाठकों के लिए सुलभ करने का श्रेय तो संपादक को ही दिया जाना चाहिए। नामवर सिंह ने शुरुआत भले ही कविता की आलोचना से की हो, पर बाद में जो कहा सुना और लिखा उसमें अधिक अनुपात दूसरी विधाओं और विषयों का ही रहा। बहरहाल कविता की जमीन और जमीन की कविता में कुछ ऐसे आलेख हैं जिनकी रचना में किसी हद तक क्रम देखा जा सकता है। ऐसे 5 आलेख जून 1963, सितंबर 1963 तक तब कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका ज्ञानोदय के लिए अनुमानतः तत्कालीन संपादक के आग्रह पर लिखे गए होंगे। सभी नई कविता के इर्द गिर्द टिके हैं। इसी तरह पुस्तक के आरंभिक 2 आलेख जिनका विषय क्रमशः रस और कविता, संस्कृत की दूसरी परंपरा, आलोचना के 2 अंकों में प्रकाशित 1990 पृष्ठ संख्या 108 1987 हुए हैं। अगले 4 लेखों में से कबीर का दुख और कबीर का सच तो आयोजनों के संदर्भ में लिखे पढ़े गए थे, और कबीर को भगवा और फिर अगवा शीर्षक से 2 आलेख सहकर्मी और पाले मित्र रहे रामस्वरूप चतुर्वेदी से एक दूसरे प्रसंग का हिसाब चुकता करने के लिए लिखे गए। लिहाजा दोनों में तर्क से ज़्यादा कटुक्तियाँ हैं। शेष आलेख अलग अलग अवसरों, कुछ भूमिकाओं के रूप में, कुछ पत्रिकाओं में, कुछ संपादकीय टिप्पणियों के रूप में, विषयों में संस्कृत के अलावा बंगला के रविंद्रनाथ ठाकुर और तमिल के सुब्रमण्यम भारती तो शामिल हैं ही, रंगाचार्य बृष्ट के एक चयन की भूमिका के अलावा लातिनी अमेरिकी वटवृक्ष पाब्लो नेरुदा पर भी 3 आलेख संकलित हैं। अवसरों और आयोजनों से जुड़े व्याख्यानों या आलेखों का सबसे बड़ा संकट यह होता है कि उनमें विषय का चयन, विस्तार, आकलन सब अवसर के अनुरोध से नियंत्रित नियमित होते हैं। पूरा और निर्बाध चिंतन असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। अवसर भेजते कभी कभी एक ही विषय पर समय के अंतराल पर कहीं लिखी बातों में असंगतियां और दरारें पैदा हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए तो और भी, जिसके बोलने के अवसर बेहिसाब हों, स्मृति का बड़े से बड़ा वरदान भी हमेशा रक्षा कवच बना रहे, यह व्यवहारिक हो ही नहीं सकता। उनके दूसरे संग्रह जमाने से दो दो हाथ में भी विविध विषयों पर वाचिक और व्याख्यानों के लिखित रूप संख्या में कहीं अधिक हैं। विधिवत टिप्पणियां समकालीन परिस्थितियों पर उस दौर में लिखी गई जब वे कुछ समय के लिए सहारा समय के साहित्यिक परामर्शदाता नियुक्त हुए। उर्दू भाषा के सवाल पर संकलित 3 लेखों में से एक वसुधा के उर्दू विशेषांक के लिए की गई संक्षिप्त सी बातचीत की प्रस्तुति है। शेष 2 हंस के लिए एक विशेष संदर्भ में विवादात्मक तेवर में लिखे गए 2 आलेख हैं। कथन के लिए रमेश उपाध्याय से की गई बातचीत की प्रस्तुति कथन संपादक ने ही 3 आलेखों में की है। संपादक ने इन आलेखों से पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि उनमें से वाचिक व्याख्यान और आलेखों के रूप में किसकी रचना किस प्रसंग में या किस पत्रिका या अवसर के निमित्त की गई। दूसरी खास बात यह है कि इन सबका संबंध अपने समय के सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य और पृष्ठ संख्या 109 प्रस्तुत प्रश्नों से है। इनमें नामवर जी का प्रखर विचारक रूप प्रकट हुआ है। विषय भले ही अवसरों या आयोजकों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, पर चिंतन की प्रखरता, शैली की विवादधर्मिता और तेवर ठेठ नामवरियन है। पाठक उनसे सहमत असहमत होने के लिए स्वतंत्र है। शेष दो संकलनों में से प्रेमचंद और भारतीय समाज में संकलित व्याख्यानों और आलेखों का महत्व इस दृष्टि से है कि संकलित सामग्री का रचनाकाल 40 वर्षों में फैला है। यह दौर भारत के सामाजिक परिदृश्य में बड़ी उथल-पुथल से भरा समय है। एक ही रचनाकार के कृतित्व को निरंतर परिवर्तनशील समय में एक ही प्रबुद्ध विचारक विभिन्न संदर्भों और विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में कैसे देख दिखा रहा है, इस पर ध्यान देना दिलचस्प होगा। भले ही यह रामलीला शर्मा की प्रेमचंद और उनका युग की तरह योजनाबद्ध कृति ना हो, पर अपने वरिष्ठों की मान्यताओं और बदलती सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों दोनों पर उनकी पैनी नज़र बरकरार है, वैसे ही जैसे उनका आक्रामक तेवर और विवादी स्वर। यह सामग्री उनसे संवाद और विवाद दोनों के लिए अवसर देती है। प्रेमचंद के कृतित्व के माध्यम से भारतीयता, सांप्रदायिकता, स्वाधीनता संग्राम के वर्ग चरित्र, भारतीय उपन्यास और सादगी का सौंदर्य शास्त्र जैसे तात्विक और व्यापक प्रश्नों पर पाठक के लिए जानने और सोचने के लिए अनेक सूत्र इन रचनाओं में मौजूद हैं। हिंदी का गद्य पर्व विधिवत लिखी गई रचनाओं का संग्रह है। इस 60 वर्ष की लंबी अवधि में फैली आलोचनात्मक मिजाज की रचनाएं, कुछ संपादकीय, कुछ संग्रहों की भूमिकाएं, कुछ अवसरों के अनुरोध से तैयार किए गए आलेख और 5 समीक्षात्मक ढंग की रचनाएं हैं। संग्रह का आरंभिक ही एक संपादकीय है, फिर 2 स्वतंत्र लेख और फिर 2 संपादकीय, जिनका संग्रह कालक्रम से क्यों नहीं किया गया समझ में नहीं आता। इनमें से अधिकांश आलेखों संपादकीयों के साथ भी दिक्कत वही है, अवसर का दबाव, किसी के प्रति श्रद्धार्पण, किसी से हिसाब चुकता करना, किसी की शताब्दी, किसी के निमित्त कोई आयोजन वर्षगांठ, क्षतिपूर्ति, 25 वर्ष का लेखा जोखा आदि। इस सब के बावजूद इनमें बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत मूल्यवान है, ऐसी विशेषता जो इन 4 संकलनों की सामग्री में मौजूद है। विषय उनके लिए प्रस्थान बिंदु पर होता है, गोताखोर के स्प्रिंग, पृष्ठ संख्या 110, बोर्ड की तरह जहाँ से वह उछाल लेते हैं। विषय विस्तार करते हैं देशकाल में, इसी विस्तार में उनकी ज्ञान गरिमा और सृजनात्मकता का बोध होता है। वह पाठक श्रोता को साथ लिए कथ्य विस्तार करते हैं, अपने समर्थन में तरह तरह के स्रोतों से सामग्री जुटाते हैं। ऐसा वही कर सकते हैं क्योंकि वे बहुपठित ही नहीं, अपने पढ़े हुए का बड़े जतन से उन्होंने मनन किया है, उसे स्मृति में धारण किया है। इस खजाने से किस अवसर पर कौन सी सामग्री निकालकर उसका प्रयोग किसी के पक्ष विपक्ष में कैसे किया जाता है, इसका अद्भुत विवेक है उनमें। इसी कौशल से उन्होंने बराबर प्रतिपक्ष को पराजित किया है और आलोचना के क्षेत्र पर लगभग आधी शताब्दी तक अखंड राज किया है। पाठक उनसे असहमत हो सकते हैं, खोजबीन कर उनमें असंगतियां और अंतर्विरोध ढूंढ सकते हैं, पर ना उनकी उपेक्षा कर सकते हैं ना उन्हें खारिज किया जा सकता है। इसी क्रम में हाल ही में नामवर सिंह की 4 और संपादित पुस्तकें प्रकाशित हुईं, उनमें से 2 उनसे और 2 उनके द्वारा औरों से की गई बातचीत के संग्रह हैं, सम्मुख और साथ साथ। पहले में बातचीत, साहित्य विचारधारा, स्त्री और दलित अस्मिताओं के प्रश्न, साहित्य की विधाओं, भाषा जैसे और तमाम प्रसंगों पर की गई है। बात करने वालों में भी उतनी ही विविधता है, इसमें कोई तारतमिकता खोजना व्यर्थ है। दिलचस्प बात यह है कि उनके सोच का विस्तार हयातंगेज है और उन्हें संवाद में निरस्त करना कठिन काम है। साथ साथ में संकलित सामग्री के बारे में संपादक ने आलोचक का पक्ष शीर्षक से जो भूमिका लिखी है, उसमें संकलित सामग्री को परिसंवाद, परिचर्चा और बातचीत कहकर अलगाया है। संभवतः रामविलास शर्मा के साथ हुई चर्चा को वह परिसंवाद और परिचर्चा कहना उचित समझते हैं और हम उम्र या अपेक्षाकृत युग सहभागियों से की जाने वाली चर्चा की बातचीत। बहरहाल सभी चर्चाओं में एक पक्ष नामवर जी का है, दूसरे पक्ष में एकाधिक लोग शामिल हैं, विषय विविध हैं और बातचीत करने वालों में सभी प्रबुद्ध पाठक, रचनाकार या उनके सहधर्मा हैं। रामविलास शर्मा के साथ ही जाने वाली परिचर्चा का परिसंवाद दोनों की वैचारिक सहमति असहमति या साहित्य और विचारधारा से जुड़े सवालों पर उनकी वैचारिक स्थिति का खुलासा करते हैं। पृष्ठ संख्या 111। शेष चर्चाओं में भी विषयों की विविधता के साथ दोनों ओर से बातचीत का खुलापन अनेक रूपों में इन संवादों को महत्वपूर्ण और किसी हद तक कितना रोचक बनाता है। इनसे नामवर सिंह के सोच और वाक्पटुता को ही नहीं, प्रश्नकर्ताओं की बौद्धिक क्षमताओं और कौशल को समझने का अवसर मिलता है। इन प्रसंगों में कवि शमशेर से नामवर जी की बातचीत इस दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है कि उनमें नामवर जी प्रश्नकर्ता के रूप में बड़ी सावधानी से शमशेर की मानसिक बनावट और रचना प्रक्रिया को समझने में पाठक की मदद करते हैं। शमशेर की कविता की बुनावट को खोलने वाले कई महत्वपूर्ण सूत्र हैं खुद कवि की जबानी इस बातचीत में। उनके शेष दो संग्रहों की संरचना अपनी पूर्ववर्ती रचनाओं के ही समान है। अलग अलग विषयों, अवसरों और समय पर दिए गए भाषणों या कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों या लिप्यांतरित भाषणों को पुस्तकाकार संग्रहित किया गया है। इनमें संपादक ने इनमें तर्तीब बैठाने का सफल प्रयास जरूर किया है। इस प्रयास में इनकी तारतमिकता कहाँ तक सिद्ध हुई, इसका निर्णय तो पाठक ही करेंगे, पर साहित्य की पहचान के पहले खंड में बकौल संपादक मुख्यतः कविता केंद्रित व्याख्यान और दूसरे में उपन्यास और कहानी पर केंद्रित व्याख्यान और वाचिक टिप्पणियां संकलित हैं। कुछ व्याख्यानों में प्रयास करने पर आंतरिक संगति बैठाई जा सकती है, गो कि उनमें अवसरों और समय का पर्याप्त अंतराल है। दूसरी तरफ आलोचना और विचारधारा चार खंडों में विभाजित है। इन चार खंडों में विभाजन का तर्क संग्रह के फ्लैप में दे दिया गया है। पहले खंड में नामवर जी के निमित्त कार्यक्रमों में दिए गए दो व्याख्यान, दूसरे खंड में उनकी आलोचना की मूल दृष्टि को स्पष्ट करने वाले व्याख्यान, जिनका परिप्रेक्ष्य स्पष्टता वैचारिक और अवधारणात्मक है। तीसरे खंड के व्याख्यानों में आलोचना के समकालीन परिदृश्य में उसके मौजूदा संकटों को पहचानने की कोशिश की गई है और अंतिम खंड में तीन शीर्षस्थ विद्वानों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा और राहुल सांकृत्यायन के कृतित्व से कुछ चुने हुए पक्षों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आलोचना के क्षेत्र में नामवर सिंह का एक बहुत बड़ा योगदान उनकी भाषा शैली है। गंभीर से गंभीर बात को सहज प्रवाही बोधगम्य शैली में कैसे पाठक तक पहुंचाया जाता है, वह इस कला के आदर्श हैं। काव्य और शिल्प पृष्ठ संख्या 112 का ऐसा तालमेल कि विचार समृद्ध, लेखन वाचन बोझिल या उबाऊ न लगे और पाठक किसी रचनात्मक कृति की तरह उसके तात्कालिक प्रभाव से अभिभूत हो जाए, ऐसी प्रभावी आलोचना का वरदान आकाश धर्मा गुरु ने अपने शिष्यों में नामवर सिंह को ही दिया था। ये बात अलग है कि इन संकलनों के प्रकाशन के साथ ही इनमें असंगतियों और अंतर्विरोधों की पड़ताल का जो सिलसिला शुरू हुआ है, स्टार देखिए लेख लोटा तुलसीदास का लाख टके का मोल, रवि श्रीवास्तव साखी, अंक 22 जुलाई सितंबर 2011। अब नामवर सिंह शायद उस विवाद में पढ़ने के बजाय उसके प्रति विराग का रास्ता ही अपनाना चाहेंगे। प्रगतिशीलता के युग में छायावाद के विरुद्ध एक अन्य प्रवृत्ति का उदय हुआ, जिसका विकास आगे चलकर प्रयोगवाद में हुआ। छायावाद की रूमानियत के विरोध में यदि एक ओर यथार्थवाद प्रेरित सामाजिक यथार्थ की प्रवृत्ति का उदय हुआ, तो दूसरी ओर T.S. इलियट के रोमांटिसिज्म विरोधी अभियान से प्रेरित नव क्लासिकी दृष्टि पैदा हुई। 5वें दशक की हिंदी आलोचना में इस दूसरी प्रवृत्ति के प्रतिनिधि लेखक थे सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय।